ओमज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक सप्ताह व्यापी जो जन्मलीला के प्रसंग आप सुन रहे थे, आज इसी को जारी रखेंगे। कल हम यहाँ तक पहुँचे थे कि क्रूर कंसक के द्वारा सेल्फ मेड किंग, वो अपना आप राजा बन गया था, पिताजी को जेल में डाल करके, और उसके बाद में देवकी और वसुदेव से जो संतान होते थे, एक के बाद एक छह संतान को हत्या कर चुका था निर्मम भाव से। अब सातवां में आपको भगवान ने भेजे थे बलदेव को, और बलराम ने आकर के देवकी माँ के गर्भ में 7 महीना रुके। उसके बाद में भगवान के द्वारा आदिष्ट होकर के योग माया देवी उनको देवी के गर्भ से लेकर के रोहिणी गर्भ में स्थापित किया, और रोहिणी गर्भ में जो गर्भ था उसको ला करके मूढ़ गर्भ करके मथुरा में जेल में डाल दिया। वो ही हल्ला हुआ कि मिसकैरेज हो गया, गर्भपात हो गया करके सारे मथुरा के लोग कंस को गाली दिए, बोले अब तो पहले मार रहा था, अभी बड़ी सी नगरा करके कैसे करके गर्भपात भी कराने लगा। तो लेकिन कंस बेचारा नहीं समझ पाया था, उनको तो आश्चर्य लगा ये कैसे हो गया, मिसकैरेज कैसे हो गया। जो भी हो, देवकी माता इस गर्भपात के बाद प्रसन्न हुई, बोले अच्छा ही हुआ, पहले जन्म लेकर मरता था और पहले से ही चला गया, क्यों उसको मारे, मामा क्यों, मामा के हाथ मरने से अच्छा ही स्वयं मर जाना अच्छा ही है। लेकिन इसके वजह से सुखी नहीं हो रहा था, वास्तविक सुखी देवकी माता इसलिए हो रहा था कि अभी 8वां आने वाला है। उनके मन में यही विचार चल रही थी कि अभी हमारा विपद, अपना आतंक पूरा होगा, हमारे स्वामी की जो जेल में रहना पड़ता है, अभी 8वां आ जाएगा तब काम मिटेगा, जितने जल्दी आवे इसलिए सुखी हो रही थी देवकी माँ। और कंस भी खुशी हो रहा था कि चलो इतने भारी अरेंजमेंट, हाई टेंशन में था, अभी तो आ रहा है, इस लास्ट फाइनल मैच है ये, तो इसके लिए वो भी तैयारी में था। और कंस अभी तक तो 6-7 बार गर्भगणना में एक्सपर्ट हो चुका था, तो इसलिए उनको अच्छी तरह से पता चल चुका था कि हर 3 महीना में माता देवकी गर्भ धारण कर लेती है, तो पता चल चुका था। और जैसे 7वां गर्भ के बाद का समय हुआ, पता चला कंस को हर बार के भांति इस बार भी विशिष्ट नर्स परिचारिकाएं भेज करके उनके सेवा बढ़ा दिया गया, वसुदेव देवकी जैसे वो हेल्थ हो जाए जल्दी, फिर 8th गर्भ फिर हो जाए, तो तैयारी चलने लगा। और कुछ ही महीना के बाद उनको खबर मिला कि दूसरे महीना चल चुका है। तो कंस इस बार इतने सतर्क रहा परिचारिकाओं से ये सुनकर कि फाइनल मैच अष्टम गर्भ का दूसरा मास चल रहा है, ये सुन करके तो उन्होंने जो परिचारिकाओं जो सेविकाएं जाते थे उनको बारंबार सतर्क करता था, बिल्कुल ध्यान रखना, वो करना और मुझे हर रिपोर्ट देना। प्राय लगभग डेली डेली उनसे मिलता था, पूछताछ करता था कैसे चल रहा है क्या है। और कभी कभी तो उनको किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता था, बोला ना ये 8th गर्भ तो ये मेरा काल है, इनके लिए तीसरा व्यवस्था है, यही अगर मैं संभाल लूँ मेरा मृत्यु गया टल गया और क्या, इसी को हैंडल करना है, बच्चे होने से तुरंत मार दूंगा खत्म, फिर मैं अमर हो जाऊंगा, इसके लिए पूरे अपने प्रयास झोंक लेना चाहता था। और इसलिए उन्होंने किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, जितने सिक्योरिटी दास दासी सब लगा रखा था, लेकिन फिर भी स्वयं खुद चला जाता था जेल में देखने के लिए वसुदेव देव की है कि नहीं, कोई भाग तो नहीं जाते, कहीं और क्या कोई गड़बड़ी तो नहीं है, आता था। इतने सतर्क अमल लंबन करने के सत्व भी एक दिन वो गिनता था दिन, अब देखते देखते 7वां महीना आ चुका था। 7वां महीने के बाद एक दिन हठात नर्स दौड़ करके आया उनके पास, हाँफती कांपती हुई उनके राजभवन में आया, हो तो पहले से ऑर्डर दिया था कोई कारागार से आए तो उनको डायरेक्ट मेरे भवन में भेज देना, उनको कोई रोक टोक नहीं है। वो सीधा उनके पास आया, दौड़ दौड़ कर आए थे, गाड़ी में चढ़कर नहीं आई थी, ऑल दी वे फ्रॉम जेल से दौड़ कर आए थे डर के मारे, और हाँफती कांपती कन से खड़ा हो गया, बताओ बताओ क्या हो गया। ना महाराज क्या बताऊँ, वसुदेव वसुदेव क्या वसुदेव हो गया, क्या वसुदेव हो गया, ना वसुदेव वसुदेव नहीं है, वसुदेव नहीं है, भाग गया के, अरे कैसे भाग गया, कैसे चला गया, बुलाओ। और तुरंत वो तो बोल नहीं पा रहा था, उसके पीछे पीछे जेलर भी दौड़ कर आया था, जो जेल सुपरिटेंडेंट वो भी दौड़ कर आया था, वो कौन से गुस्सा में था, क्या होगा बस, नहीं भागा नहीं, वो है लेकिन नहीं है, है? है नहीं है, ये क्या बात है। कंस बिल्कुल सता हो, डांटा, ठीक से बोलो क्या बोलना चाहिए, मैं तो व्यथित कर रहा है। तो जेलर ने बताया कि मैं क्या बताऊं, अभी तक तो वसुदेव के इतना साल से मैं जेल में रखा था, डेली में चेक कर रहा था, लेकिन आज मैं जो वसुदेव को देखा वो वसुदेव नहीं है, वो तो मैं जन्म से अभी तक इतने तेज किसी में नहीं देखा था, वो तो और कुछ है, पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे मारिए, दंड दीजिए, मुझे ट्रांसफर कर दीजिए और कहीं जेल में, या कुछ भी जो कुछ कीजिए, मैं या मेरे जितने असिस्टेंट स्टाफ से किसी में ये ताकत नहीं है अब वसुदेव के सामना करने में। ये तो अभी तक भाग्य अच्छा है, सौभाग्य कि वसुदेव हमके ऑर्डर नहीं दिए कि मुझे निकाल कर लेकर वहाँ छोड़ दो, नहीं तो हम खुद उनको लेकर और कहीं छोड़ कर आ जाते, उनके आदेश को हम अवमानना नहीं कर सकते, आप जो मर्जी शो कर लीजिए सरेंडर। आप कम से तो गुस्से में चल गए, तुम ऐसा करेगा ना महाराज, गुस्सा हमारे ऊपर मत कीजिए, विश्वास नहीं करने तो स्वयं चल कर देख सकते, चलो अभी चलता हूँ, वो विश्वास नहीं कर रहा था, नहीं पग पग क्या करता है इसे, वसुदेव के कैसे निकल के छोड़ देगा वो तुम्हें। कंस तुरंत मंगाया आपने गाड़ी से, उनको सबको बैठा कर लेकर गया, ओ मेड सर्वेंट को और जेलर को भी इंचार्ज को लेकर के गाड़ी में गया, और बिल्कुल पहले तो एक्सपीरियंस था नहीं, मन में सोच रहा था क्या हो गया, कोई भूत प्रेत आ गया क्या, ऐसे बोल रहे हैं बकवास कर रहे हैं। जा करके जेल में घुसा, जेल रखे के तो पीछे पीछे चल रहा था, बोला मैं आगे सामने नहीं जाऊँगा, मैं देखूंगा ही नहीं, अरे चल मैं चलता हूँ साथ में। साथ में जा करके जेल के दरवाजा खोला, जब कक्षे के अंदर गया, वसुदेव के ऊपर एक नजर पड़ते ही पीछे भाग करके कई कदम हट करके आ गया, बैक स्टेप में आया, चौंक करके पीछे कदम से कई स्टेप आ गया, आ करके वो मुंह उठाकर देखा नहीं वसुदेव, एक नजर डाला था बस, और मन में पसीना उतर गया धड़ धड़ उनका शरीर से, तुरंत वो सोच रहा था, वो कांप रहा था, वो थर थर कांप रहा था, और हमेशा वो जेल में आता था, वसुदेव जी कंस को देख करके विनम्रता के मूर्ति वर्ण जाते थे, क्यों जानते थे नृसंस कुछ भी करेगा क्या करना है, लेकिन आज आज वही वसुदेव उनके अंदर इतने तेज इतने प्रकाश आ चुका था कि कंस उनको देखा, उन्होंने कोई डरे नहीं, कोई आतंकग्रस्त नहीं थे, एक नजर ऐसे कंस की ओर देख लिए, कंस को लगा रहा था जैसे कि वनराज सिंह कोई अति निम्न प्राणी ससक को ऐसे देख रहता है। कंस गुरु थर थर कांप उठा, बाप रे बाप, ये वसुदेव भैया क्या है? क्योंकि कंस अब तक त्रिलोक विजय कर चुका था, देवलोक में जाकर के सारे देवताओं को परास्त किया था, देवताओं को देखा था उन्होंने, किसी में इतने तेज नहीं देखा था, इंद्र चंद्र वरुण आदि का सामना किया था उन्होंने, किसी में ऐसे तेजस इतने प्रकाश नहीं देखा था, उनके कल्पना से भी बाहर कल्पनातीत प्रकाश था वसुदेव में, और इतने प्रभाव था, इतने पराक्रम था वसुदेव में, वो सोच नहीं सकता था, वो थर थर कांपते सोच रहा था ये नजर में कि सही में जेल सुपरिटेंडेंट सही बात कर रहा था। अभी मेरा मन में आता है, अगर ये तेजस्वी पुरुष सामने खड़ा है, अगर वो अभी यहीं खड़े खड़े मैं दूर में हूँ, अगर दूर से खड़ा होकर मुझे बोल दे कंस इसी क्षण तुम्हारा धड़ से मस्तक अलग करके मेरे चरण में रख दो, शायद इस आज्ञा को मैं भी अवज्ञा करने के लिए असमर्थ हो जाऊंगा, मुझे भी पालन करना पड़ेगा, शायद अपने हाथ से अपने गला काटना ही पड़ेगा अगर वो बोल दे तो। अच्छा है कि बोल नहीं रहा है कुछ वो जेल लगे को तो सही बात कर रहा था। इस समय तो उनके आज्ञा को केवल पालन किया जा सकता है, अवज्ञा नहीं किया जा सकता। कंस समझ रहा था इसी समय संपूर्ण चराचर सृष्टि में वसुदेव तो दुर्दशा दुस्सह हो पड़ा था। क्यों? क्योंकि संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो रक्षक पालक वो मन आनक दुंद भी प्रविष्ट अंश भागे न मन आनक दुंद भी वसुदेव के मन में प्रवेश कर चुके थे। जदु नाम निज नाथा नाम, जदुओं के अपने भक्तों की इतने कष्ट को देख करके भगवान और ज्यादा अपेक्षा नहीं किए, स्वयं अपने भाई साहब को खाली करा करके सीट बड़देव को रोहिणी माता के घर में भेज करके स्वयं वसुदेव के मन में आ चुके थे। यहाँ आचार्य लोग कहते हैं देखिए भगवान जब आते हैं ऐसे गर्भवास नहीं कर आते हैं, गर्भ में नहीं आते हैं, आते हैं लेकिन हमारे तरह नहीं, वही जीव और भगवान में अंतर है। हम लोग सब जीव जन्म होते हैं जब माता पिता का रक्त सुनित और शुक्र के मिलन में हमारा का बनावटी होता है, गर्भकोश में हमारा परिपोषण होता है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान आते हैं तो मन में ही आते हैं, इसलिए मन को शुद्ध करना होगा। इसलिए भगवान हमेशा कहते हैं जोग जुंजन मया सक्त मना पार्थम जोग जुंजन मदाश्रय, अगर तो भक्ति योग करना है तो मन को मुझ में आसक्त करके करो, बाकी शरीर से मेरा कोई मतलब नहीं, तेरा शरीर थर्ड क्लास है, मन को चाहिए मुझे मन दो। इसलिए भगवान जब आते हैं तो मन में ही आते हैं। तो अगर आप सचमुच जन्माष्टमी करना चाहता है इस शरीर की ध्यान मत दीजिए, मन को ध्यान दीजिए, मन से ही भगवान आविर्भाव होते हैं। तो मन आनक दंद भी, मन तो शरीर का मुख्य अंग है, अनसीन पार्ट है, तो इसी में जब आ चुके हैं भगवान तो वसुदेव से कुछ दूसरे स्थिति में शरीर के सुदबुद नहीं, उनके उनके अंदर एक अनिर्वचनीय अद्भुत आनंद की लहर ले रहा है उनके अंदर, वो तो उसी में बिल्कुल समाधि दशा में जा चुके हैं। वो कंस आया, वो जेलर आया, कोई आया हो क्या, सब देखते नहीं हो तो, वो तो बिल्कुल आनंदे का घन नीलमणि भगवान को साक्षात देख रहे थे। वो गोद में आता था, जाता था, हंसता था, उसी को देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे इस आनंद को। अब कंस आकर देख रहे, इतनी डर गया क्योंकि भगवत प्रकाश है, तो वसुदेव का प्रकाश नहीं था, वसुदेव में भगवान आ चुके थे। तो कंस और ज्यादा समय टिका नहीं, वो बैक स्टेप में धीरे 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 कांपते हुए शरीर में जेल से बाहर आ गया। पूरे जेलर की स्टाफ सुपरिटेंडेंट सब तो कांप रहे थे, थर थर कांप रहे थे, क्या किया जाए। इमिडिएट मीटिंग किया, जेल से बाहर आ करके बोला पहले दरवाजा बंद करो, एक्स्ट्रा ताला लगाओ, फिर मीटिंग करते हैं। अब ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया था, सुबह सुबह गया था वो बेचारा, उस दिन भी फास्टिंग किया। हम लोग भी फास्टिंग कर रहे हैं ना, हम लोग तो भगवान आएंगे इसलिए फास्टिंग कर रहे हैं, वो तो भगवान आने वाले हैं इसलिए फास्टिंग कर रहा था, वो भी डर के मारे वो भी कुछ पानी तक नहीं लिया, बैठ के मीटिंग करने लगा। हम लोग मीटिंग करते हैं कैसे भगवान की आगवानी करेंगे, कैसे सजावट करेंगे, स्टेज प्रोग्राम कब करेंगे, वीआईपी एंट्री कहाँ करेंगे, इसको कैसे डील करेंगे, वो भी सोच रहा था। वो सुपर वीआईपी आ गए, उनको कैसे डील करूं, ऐसे कैसे क्या क्या करूं, जल बंद बंद रखो, डोर कहाँ से बंद करूँ, किसको खोलूँ, क्या करूँ, वो भी बड़ा चिंतित था। सभी स्टाफ लेकर भारी मीटिंग बैठाया, बैठा करके सोचा क्या किया जाए, कैसे हैंडल करो, कुछ बोल दे अगर खुद निकल आए, कोई रोके ना। सर आप खुद देखे ना, हाँ यहाँ तो रोका नहीं जा सकता, अभी तक आया ही नहीं, अगर आ जाए निकल जाए तो देवकी लेकर चला जाए, अरे मेरा सारे गड़बड़ हो जाएगा, यही तो फाइनल मैच है, अब आज ही निकल जाए कुछ गड़बड़ हो जाए, बहुत चिंता में टेंशन पड़ करके बोला ना आप ऐसे नहीं जेल में, अभी तक आठवां गर्भ तक वसुदेव देव की हाथ पैर में बेड़ी कड़ी नहीं लगाया था, आज ही डिसाइड किया उनके हाथ और पैर मोटे मोटे सिकुड़ी से बांध दिया जाए, साकल से लोहे की चैन से, ये डिसाइड तो किया, लेकिन ये राजा क्या पालन होगा कैसे, कौन बांधेगा। कंस स्वयं जाने के लिए काम उठता है, बोले ना मैं नहीं जाऊंगा, वो जेल सम्राट तो पहले से बोला मुझे मार दो, अब नौकरी जाए, मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, जीवन किसी को प्यार नहीं भाई, नौकरी जाने तो बस कितना रहूं, मैं नहीं जाऊंगा जेल में, बाप रे बाप कौन खड़ा है वो, और कोई नहीं जाता है, जब वो जेलर सुपरिटेंडेंट वो नहीं जाते, वो असिस्टेंट जाएंगे, वो तो बेचारे कुछ कहाँ कहाँ सब खड़े हैं, भारी मीटिंग हुआ बहुत, बोला नहीं न्यू स्टाफ अपॉइंट किया जाए, बिल्कुल बताना नहीं कि कौन है। उसी दिन एडवर्टाइज दिया, एडवर्टाइज कि इमरजेंसी रिक्रूटमेंट किया, और रिक्रूटमेंट का फ्री जो भी आए लिया जाए उसको। लेकिन यही है, कोई गड़बड़ नहीं करना, जो आदेश दिया जाए पालन करना, एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा आपके लिए, अपॉइंटमेंट दिया अगर, कुछ लोग तो जो नौकरी की तलाश में थे फटाफट अप्लाई किए, बोले चलो हो गया असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट सर्विस वैकेंसी हो गया। एक साथ में 10 अपॉइंटमेंट खाली किया, क्यों, क्योंकि जेल में बांधना था ना लोहा चैन फिन लाना बांधना, और इतने हाई बजट दे करके अपॉइंटमेंट किया, लोग आगे लोगों को पता नहीं था, जिनको बिल्कुल पता नहीं था इसके बारे में, उनको अपने को बताया भी नहीं, किसी को नहीं बताना क्या चल रहा, खुद डर डर कांप रहा था, उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया, इसी कर अपॉइंटमेंट किया और जब असाइनमेंट दिया, क्या जब था, ये मोटे बिल्कुल स्टील का चेन है, उसको लेकर जाओ जो कैदी दोनों है अंदर अभी तक, उनके हाथ और पैर बांधना, उनको इसे पता नहीं था, और क्या है, बांध कर आ जाएंगे, अब सार में बड़ी गार्ड जाएंगे ना, बड़ी गार्ड दूर में खड़े रहेंगे, अब बांध कराना उसको क्या, और अच्छे है सेंटली पीपल, ये गड़बड़ नहीं करते हैं, तो दुष्ट नहीं है। तो समझा दिए, तो लेकर के गए, वो बाहर बैठ करके हमेशा पता लगे थे बांध रहे कि नहीं, वो नए स्टाफ अपार्टमेंट जो हुए थे वो गए, वो बेचारे आराम से जाकर बांधे, माता देवी की और वसुदेव को हाथ और बेड़ी और कड़ी दोनों हाथ और पैर में मोटे मोटे चैन बांधे, उनको तो पता नहीं चला क्यों इतने परेशान है, हम तो आराम से बांधे, खींच करके पैर में बिल्कुल जकड़ करके बांधे, मोटा ताला भी लगाए, वो कुछ नहीं कर रहे थे, क्या अरे हो अपना स्थिति में होते तभी तो कुछ करते ना, वसुदेव जो शरीर में थे ही नहीं, वो तो दूसरे कुछ स्थिति में थे, उनको कोई आए पैर पकड़ा हाथ पकड़ा बांधा, वो कुछ भी नहीं पता चला था उनको, वो शरीर शुद्धि से परे थे, और उनके पत्नी देवकी वो अपने पति देव को इस तेजस इस रूप में देख करके, वो जब से रात से जब वसुदेव में भगवान प्रवेश करके उन रूप को देख करके, देवकी भी आधा होश उड़ चुकी थी, वो आकर के उनके पति के चरण पकड़ करके बल बल करके देख रही थी उन मुख को, मन में दोहरा रहे थे मेरे पति तो महापुरुष है, वो तो परम पुरुष है, मैं कहाँ मान नहीं रहा था, मैं तो पहले से मानती थी, लेकिन अभी तक ऐसे रूप मुझे नहीं दिखाए थे, आज इसी दासी के ऊपर कृपा करके असली उनके स्वरूप आज मुझे दर्शन करा है, ओहो ये तो पर देवता है, कोई देवता भी ऐसे नहीं होंगे, आहा ऐसे भक्ति पूरित होकर पति के प्रति उनके चरण में बारंबार मथानत करती थी, उस एक से देखती रही, देख देख कर वो भी भूल चुकी थी अपने आप को, इसी दशा में ये न्यू अपॉइंटेड स्टाफ जा करके मोटे मोटे लोहे की चेन में उनके हाथ और पैर को खींच करके बांधे, उनको पता ही नहीं चला कि बंधे है कि नहीं बंधे है, कुछ नहीं पता चला, वो तो दूसरी सोच में शरीर बुद्धि से परे थे, इसलिए संभव हो पाया, अगर वो बोल देते तो किसी का शक्ति नहीं था कि उनको बांध पाए, वो किसी को बोल नहीं रहे थे, तो आपने में मग्न थे, इसमें से आत्मा में रमण कर रहे थे, और भगवान आ चुके थे, वसुदेव इसमें थे, देवकी माँ उनको देख रहे थे, दोनों ही दोनों बिल्कुल इसी स्थिति में थे, इसलिए संभव हो पाया उनको बड़ी कड़ी पहना करके, जब बड़ी कड़ी पहन कर कंस आ गया, कंस तभी तक बैठा था दोपहर तक, जब तक नहीं अपॉइंटमेंट हुआ, रिक्रूटमेंट हुआ, जब असाइनमेंट हुआ और चेयर लेकर बांधे, तभी तक बिना फास्टिंग के नीचे ला करके वहीं बैठा था। तब तक सारे स्टाफ लेकर के चेन बांध करके आया, पता लगाया जिसको, जब दूर से जाकर देखो, फोटो खींच के ला मुझे दिखाओ, ठीक से बांधा है कि नहीं, हाँ ठीक से बांधा है, तब ठीक है। बोला उसी दिन जेल के दरवाजे में 8 गेज के लोहा के चदर और चढ़ाया, चढ़ाकर वेल्डिंग करके उसमें 2 और बड़ा बड़ा ताला लगाया, एक्स्ट्रा और शिकुड़ी और ताला लगा दिया, किड़क और ताला लगा करके वो जेलर को बोला तुम ठीक है तुम रहो, मोर और 2-4 स्टाफ और एक्स्ट्रा भेज रहा हूँ गनमैन अगर कुछ बढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि वो फाइनल था ना, इसलिए बहुत चिंतित था। तो जब जा रहा था इसे करके व्यवस्था, तभी भी कंस स्वयं शंकाग्रस्त था, वो सोच रहा था क्या इतने व्यवस्था जो मैं कर रहा हूँ ये क्या पर्याप्त है, मन में सोच रहा था क्या पर्याप्त है, अगर वसुदेव इसी क्षण आ जाए इस लोहे के कबाड़ को बोल दे खोल जाए कबाड़, उनके बात मानेगा नहीं मानेगा जब मेरा ये हालत है, ये जड़ किबाड़ उनके बात मानेगा क्या, लेकिन मैं उसके अलावा और कर क्या सकता हूँ, यही तो मैं कर सकता हूँ, इसके अलावा और ज्यादा व्यवस्था तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। इसलिए महाचिंता लेकर के जन्माष्टमी के फास्टिंग हम लोग तो आनंद से कर रहे हैं, और निरानंद से किया, वो भी किया फास्टिंग निर्जला, वो गया बेचारा गाड़ी लेकर के बड़े टेंशन में, हाई बीपी और हार्ट बीटिंग सब बढ़ चुका था उसका, और गया जा करके वही हमेशा चौंकना रहता था कि पता नहीं क्या वसुदेव निकल जाए कुछ है, हमेशा खबर लेता था, और जा करके खूब सोचा, सोच करके सोच रहा था स्टाफ रखूं ना रखूं, वसुदेव किसको बोलेगा क्या बोलेगा, मन में विचार आया और दूसरे पूरे रात नहीं सो पाया, और वो सचमुच भगवान वसुदेव के मन में आ करके वसुदेव से माँ देवकी में आ गई, देवकी तो बिल्कुल चरण में पड़ी थी, धीरे धीरे सारा रात वसुदेव में रह करके, वसुदेव के मन हृदय में रह करके उसमें प्रकाश ट्रांसफर हो गया देवी की माँ में। दूसरे दिन सुबह जो न्यू स्टाफ थे वो जब गए वो चौंक करके भागे, वसुदेव तो नॉर्मल लेकिन देवकी कुछ और, वो दौड़कर आके खबर दी, कंस तो डर रहा था नहीं जाऊंगा जाऊंगा नहीं जाऊंगा, देवकी का क्या हो गया, जब खबर दी वसुदेव ना इज नॉर्मल राम नॉर्मल पक्का ना पक्का नॉर्मल हो गया, तब चला पुल में जाकर देखती हूँ देवकी का क्या हो गया। अब स्वयं कंस फिर आया, बड़े साहस करके आया, वहां करके दोबारा जेलर को भेजा, बोले जाके पक्का देख करके आओ कि वसुदेव किस स्थिति में है, बोला सर वसुदेव नॉर्मल है, वो बंधा हुआ है बड़े मोटे चेन से बंधे हुए हैं नॉर्मल है। तब कंस गया तो फिर भी वसुदेव को नहीं देख रहा था, मुंह नीचे करके गया, नहीं देखना चाहता था, जा करके मुंह उठाकर देवकी की ओर देखा, देवकी तो उनके सामने जन्म हुआ था, देवकी का बचपन से उनके जन्म समय से उसको देख देख कर आई, पालन पोषण की, उनको शादी तो खुद की उन्होंने, अब उनको इतने प्यारी बहन उनको नहीं जानती उन्होंने उनका घर में, तो उनको देखने के लिए वो क्या हो सकता है ये लोग बोलते हैं। अब जब नजर उठा के देवकी को देख ली, अभी भी लगा ना बिल्कुल सही कह रहे थे, देवकी तो है लेकिन अजस्र तेज संपन्नी कोई देवी जैसे आ गई। अब कंस को मन में 100% कन्फर्म हो गया कि अभी मुझे समझ में आया। तब फिर वसुदेव को नजर उठाया, वसुदेव देखा कि जैसे पहले थे ऐसे ही है, अब वो 100% कन्फर्म हो गया कि निश्चित रूप से मुझे मारने वाला जो हरि, जिनके लिए मैं तैयारी कर रहा था, जो फाइनल मेरा गोल था, वो आ चुका है। वसुदेव में आया था इसलिए वसुदेव में तेज प्रकाश बढ़ गया था, अब देवकी में आ चुकी है, अब देवकी में वो हरि आ चुका है, मुझे मारना वाला मेरा काल आ चुका है, इसलिए उसके अंदर असमर्थ तेजस तेजस है। अब देवकी माता को देख, और देवकी पहले डरती थी, वो डरती भी नहीं है, ओ बैठ के नजर डाला, कंस भी थोड़ा सहम गया, तब देख कर देवकी तो देवकी उनको इतना न तो डरने वाला था नहीं। और जब 100% कन्फर्म हो गया मेरे काल मेरे शत्रु मेरे चीर शत्रु पहले जन्म का शत्रु इसी जन्म का शत्रु वो आ चुका है मेरे सामने है मेरे बहन के शरीर में आ चुका है और मेरे बहन अभी बड़ी कड़ी में अरेस्टेड है और पूरे सिक्योरिटी है जेल के अंदर बैठा है अब बिना उनको शेष ना कर दूं। तभी तो बीच बाजार में उपुल्ली मान रहा था इतने सारे था अपोजिशन कोई था अब तो कोई देखने वाला नहीं आ मेलो नहीं है तुरंत अपने दक्षिण हस्त उनके राज के तलवार के मुट्ठी में चला गया। अब खींच दिया आधा, अब शेष कर दो, कोई है नहीं। तभी तो वसुदेव मेरा हाथ पकड़ा था, अभी पकड़ भी नहीं सकते, उनका भी हाथ बंधा हुआ है, पैर भी बंधा हुआ, हिल लोर नहीं सकते। देवकी का भी यही हाल है, कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा ही जेल है, मैं ही अकेले हूँ, बाकी सारे मेरे स्टाफ बाहर खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं अकेले अवस्था में। अब खत्म कर दूं, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, खत्म, और क्या करना है। खींच लिया तलवार, खींचते खींचते मन में विचार उठा, छी कंस तू भोज वंश के होनहार युवराज हो, अभी तो महाराज हो, ऐसे एक स्त्री जो जेल में है, जिनका हाथ पैर बंधी हुई है, तेरे छोटी बहन है और गर्भवती है, इस अवस्था में मारोगे? छी 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 छी, बहुत बुरा काम, ऐसा हीन कर्म कंस तुझे नहीं करना चाहिए। अपने मन में विचार उठता है, लोग क्या कहेंगे, ये बहुत खराब काम है, लोग भले सामने कुछ नहीं कहेंगे, पीछे तो निंदा करेंगे, अभी तक किसी कोई निंदा नहीं कर रहा है अभी तो कोई दुष्कर्म बाकी रह गया उसका, लेकिन आपने आपको सोच रहा, ना 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 ना, ये इसे दुष्कर्म नहीं करूंगा, इसमें बड़ा पाप होगा, बहुत पाप होगा, क्योंकि भ्रूण हत्या है, गर्भिणी स्त्री को हत्या, भ्रूण हत्या, स्त्री हत्या, बहन की हत्या, ओहो असहाय की हत्या, ओ महापाप है। और कंस को शास्त्र याद आया, मैं शास्त्र में पढ़ा हूं कि जब महापाप, ऐसे को महापाप कृत्य कोई करता है, वो पाप और लेट नहीं होता, तुरंत मूर्तिमंत होकर आ जाता है, वो आके सर में बैठ करके उसके फल दान करता है, उसके फल में क्या होता है ना, तुरंत आयु श्री जस सब खा जाता है, चट जाता है, सब खत्म हो जाता है। मैं जैसे अमर अमरत्व प्राप्त करने वाला, मेरा आयु खत्म हो जाएगा, मेरे सौंदर्य धन खत्म हो जाएगा, मेरे जस खत्म हो जाएगा, जैसे बहुत जसस्वी है, मेरे खत्म हो जाएगा। मन में ऐसे विचार उठा, ना 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 ना, छी ये थर्ड क्लास काम नहीं करूंगा, क्या है उसको मार के, मेरे जेल में तो है, बंधे हुए हैं, लड़का पैदा हो जाए तुरंत मार डालूंगा, कोई बोलेंगे नहीं तो इतने पाप की बात नहीं, लड़का कितने मारा हूं पहले एक्सपीरियंस है, और एक लड़का मार दूंगा, क्या पता है, छह सात मार चुका हूं, मार दूंगा, ऐसे गर्भिणी स्त्री को नहीं मारूंगा। ऐसे मन में ऐसे सद विचार उठा, सोचने में गड़बड़ लगता, क्या कंस का हो गया, कैसे जेंटलमैन होने रहा भाई, ये सचमुच कंस का विचार नहीं था, इस अकेले जेल के महानृशंस निर्मम कंस का साक्षात काल को सामने देख करके जो पब्लिकली मर्डर करना जा रहा था, आज इसे विचार मन में क्यों उठ रहा है, खींच करके फिर रख दिया, खुद बिचना नहीं, नहीं मारना चाहिए, कोई समझाने वाला भी था नहीं, क्यों, ये कंस का प्रभाव नहीं था, ये प्रभाव तो उनका था जो धर्म के धुरी धारण करने वाले, जो साक्षात धर्म प्रतिष्ठाता भगवान देवकी माँ के गर्भ में आ चुके थे, उन्हीं के प्रभाव से प्रभावित हो रहा था कंस, कुछ मीटर दूर में खड़ा था ना, वो तो कई दूर दूर तक उनको प्रभाव जाता है, हम तो पता नहीं कितने दूर में द्वारका मंदिर में बैठे हैं तभी प्रभावित करता है, हम अन्न जल त्याग करके बैठे हैं आकर के 10 बजे तक, जब ये प्रभाव उनका है तब वो तो सामने ही खड़ा था कुछ दूर में, तो उस प्रभाव से प्रभावित हो रहा था कंस के विचार, उनके बुद्धि, उनके अंतरात्मा प्रभावित हो रहा था, तो गलत विचार आ नहीं सकता, वो परम पवित्र परम धर्म पुरुष का प्रभाव से कौन अधर्म टिक कैसे सकता है उनके सामने, यदि प्रकट नहीं हुए थे लेकिन उनके प्रभाव से उनके सामने कोई अधर्म कर ही नहीं सकता है, इसलिए कंस का मन में ये पाप अधर्म के विचार उठ नहीं सका, स्वयं अपने आप को समझा बुझा करके म्यान से तलवार फिर रख दिया, छी छी कार करके, ना नहीं करूंगा, ओके नो प्रॉब्लम, जैसे उनका ठीक ठाक चल रहा है वेट कर रहा हूं, लड़का हो जाएगा तब मार डालूंगा, ऐसे करके वापस आ गया, वापस बाहर आया, बाहर आने के बाद में फिर अपने कंस ठीक हो गया, जो प्रभाव वहां था प्रभाव चला गया, बाहर आकर के सोचा, अरे मैं क्यों छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था यार, है ना, फिर चलो, नहीं अब जब आ गया तो चलो, लेकिन वहीं बैठ के विचार किया, अगर देवकी का ऐसी दशा हो गया, वो सारे ये जितने सेविकाएं हैं स्टाफ हैं ये सब बोलते हैं कि देवकी माँ कुछ अगर बोले तो उनको पालन करना ही पड़ेगा, सचमुच मैंने देखा कि उनका प्रभाव ऐसा है, तब बैठ करके डिसाइड किया ना कुछ तो करना पड़ेगा, सारे स्टाफ चेंज कर दिया, गेट आउट, सबको निकाल दिया, फल पेंशन मिलेगा, जाओ निर्वाह ब्याह मिलेगा आपको। अरे ये टाइम नहीं हमका, अभी तो बहुत उम्र है। नहीं 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 नहीं, कटाओ, सब चेंज कर दिया। अरे भाई जेल में किसी को रखा है, उनका पोषण तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो किसी, अभी आठवां चल रहा है महीना, अभी एक आध महीना बाकी है ना, नहीं तब तो भाई उनको तो सप्लाई तो देना पड़ेगा जेल में, अब तो कोई नहीं है, रोहिणी देव भी नहीं है, तब तो स्टाफ तो भेजना पड़ेगा ना, भेजना पड़ेगा। कंस खूब सोच में पड़ गया, क्या करूं, वे स्टाफ तो डर रहे हैं, अगर देवकी वस्तु कुछ बोल दे वही से बंदे बंदे लेकर कहीं और उनको छोड़ दें, कुछ करें, नहीं 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 ऐसे चांस मुझे नहीं लेना है। तब बहुत सोच विचार करके, रात भर सोच सोच कर इसे डिसाइड किया, नया स्टाफ रिक्रूटमेंट करूंगा। कौन सा स्टाफ, जैसे कभी कभी हम लोग कोई अप्लाई करते हैं, बड़े बुद्धिमान है, सब काम है, लेकिन घूंगे हैं, बोल नहीं पाते, उसको कोई अपॉइंटमेंट करेगा, रिजेक्ट। जो घूंगे बहरे लोग को कोई अपॉइंटमेंट करता है, बेचारे खूब चालाक है, शरीर बहुत सुडल है, लेकिन घूंगे बहरे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं देता। लेकिन कंस का बुद्धि अभी इतने सुधर गया, बोला उन्हीं को अपॉइंटमेंट दूंगा मैंने, जो घूंगे और बहरे हैं, 100% जो घूंगे बहरे वही कैंडिडेट मुझे चाहिए, क्योंकि वहाँ सुन भी नहीं सकेगा, बोल भी नहीं सकेगा, तो जाएंगे देवकी वस्तु कुछ बोले भी सुना नहीं पड़ेगा, वो बोलेंगे उन्हें बस जो सप्लाई देना था भोजन लेकर देकर आ जाएगा, चुपचाप अपना काम करेगा, रूम साफ करके आ जाएगा, कोई बोल्यूशन नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो कैंडिडेट वही ढूंढ रहा था घूंगे बहरे, तो तुरंत एडवर्टाइज किया सारे मीडिया में, सब में दे दिया। अब मीडिया अपॉइंटमेंट, वो इतने पे स्केल बहुत बड़े पैकेज है अब, लेकिन कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, घूंगे और बहरे, कोई मैडम हो पुरुष नहीं चाहिए कोई मेड सर्वेंट चाहिए जो घूंगे बहरे और आए सबसे ज्यादा पे स्केल उसका। अब थोड़ी समय के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए 2 महीना के, लेकिन फिर भी चाहिए। अब कुछ तो होंगे देश में भी ऐसा, कोई आ गए, बोला एज का कोई लिमिट नहीं है, बूढ़े होने से भी चलेगा, बूढ़ी मैंने बूढ़े तो बूढ़ी होने से भी चलेगा, एज नहीं चलेगा, लेकिन होना चाहिए घूंगे और बहरे। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे आ गए, आ गए तो तुरंत फास्ट कम फास्ट सब अपॉइंटमेंट कर दिया हमको। अपॉइंटमेंट करके कंस को भी 3 महीने का कोर्स लेना पड़ा, कौन कौन सा मालूम है ना, नहीं नहीं जो सांकेतिक भाषा, वहाँ सांकेतिक भाषा कोर्स होता ना, जैसे लैंग्वेज जो भाषा में बोलते हैं इसे इसे करके ठाठ ठूर कि वो क्या बोलते हैं समझने के लिए, तो बातचीत करेगा ना उनसे, कैसे समझेगा वो क्या बोलते ये कोर्स भी किया, इमरजेंसी रात दिन लगा करके, टीचर कोचिंग लगा करके किया करके, फास्ट उनसे खबर लेता था, और वो कभी कभी आकर बताते थे, हाँ देख माँ कैसे हमें खाने दिए, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ठीक है, ठीक ठाक खबर लेता था। एक दिन आकर के वो बैठाए ठुर ठार करके, इसी सांकेतिक भाषा में लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था, बड़ा ये क्या हो गया। उनके कोच को बुलाया, बोला मुझे ट्रांसलेशन करके बताओ क्या बता रहे हो, जो टीचर था उनका सांकेतिक भाषा उनको भी बोला, वो भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो साधारण भाषा नहीं बोल रहे थे, क्यों, क्योंकि ये मेड सर्वेंट देखे थे कि वो घर में कुछ अद्भुत काम हो रहा था जेल का, रा क्या वो बोलते हैं कि बिल्कुल लाइटेड हो गया, लाइट नहीं था, लाइट जल गया, और 4 मुख वाले 5 मुख वाले सब घर में आ गए थे, वो किसी का समझ में थोड़ी आएगा, वो सर दिखाते हैं 5-4 सर वाले, वो बोलते हैं हो क्या गया, दिमाग तेरा खराब है तेरे दिमाग खराब है, वो कोच भी आ रहे, वो भी समझ नहीं, ये क्या बोल रहा है। वसुदेव कहता हम देखे एक ही सर है ना, वसुदेव के सर एक ही है ना, हाँ एक ही है, देवकी एक ही ना एक ही है, अरे ये क्या है, 4 सर 5 सर किसका है भाई, आंख भी इतना, हाथ भी इतना, वो बेचारा सच बता रही है, उनको समझ में नहीं, देवता लोग आ चुके थे सारे, देवकी माँ के गर्भ में भगवान आ चुके हैं, इसीलिए देवताओं को पता चल चुका था, उनके लिए तो कोई सिक्योरिटी फिक्योरिटी का तो चांस नहीं था, वो तो सीधा डाउनलोड हो रहे थे डेल के अंदर, उनको क्या सीधा वहीं से आते थे और आ करके गर्भस्तुति कर रहे थे। गर्भस्तुति करने के लिए अब जब पहुंचते थे वो दुबक जाते थे, वो बोलते थे आजकल हम खाना देते थे वो नहीं खाते हैं, वो वहां से इम्पोर्टेड डिश आता है उनके लिए वो प्लेट वहां से बनी बनाए के लाते हैं, कौन लाते हैं, अरे ऐसे ऐसे बता रहे हैं सब, और ऐसे ऐसे माला पहनाते हैं, उनको पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, घर साफ कपड़ा सब ऐसे करते हैं। उन विचारों का वर्णन कोई नहीं समझ पा रहा था, कंस परेशान था, अब पहले तो डरा हुआ था, अब डर डर के जाना चाहता था, जा करके एक दिन गया भाई, इतनी परेशान था, एक दिन गया, कई स्टाफ लेकर के गया, जेल खोलकर देखा तो चुपचाप बैठे थे, कुछ फूल पड़ा हुआ था फर्श में, बाकी कोई था नहीं, कंसा आता सब चले गए थे, लोग छिप गए थे, फूल पड़ा हुआ था क्योंकि देवकी अभी अभी पूजा किए थे ब्रह्मादि देवता आकर के। ये फूल उठाया देखा, इतने सेंटेड फ्लावर था, आपके जितने फूल अभी लगाए तो दिल्ली का है, कहीं कहीं वो कहाँ से मंगाते हैं, कलकत्ता से, इंडिया से, थाईलैंड से मंगाते हैं, वो यहाँ का भी नहीं था, वो वर्ल्ड वाइड नहीं था, वो तो बिल्कुल दूसरे प्लैनेट से आया था, क्योंकि देवता लाए थे, देवलोक का फूल था, देवलोक का दिव्य पुष्प पड़ा हुआ था, दिव्य पुष्प ला करके वो देवकी को पूजा किए थे, गर्भ पूजा किए थे उन्होंने, उसको देख करके कंस लेकर परेशान हो गए, ये मथुरा में तो है नहीं है, इम्पोर्टेड फ्लावर कहाँ से आया, पता लगाओ, कैसे पता लगाए, दिव्य पुष्प था, और परेशानी में पड़ गया, और परेशानी में पड़ करके वो जो बाहर निकला, अब कंस और दूसरा कंस नहीं था, अब बिल्कुल उन्माद ग्रस्त था, बिल्कुल आतंक ग्रस्त था, भारी सर लेकर के गया, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है उन दोनों का, ये कैसे कैसे चेंज से हो रहा है, स्टाफ भी मैंने ऐसे रखा लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ये निश्चित रूप से मेरे काल आ चुका है, वो आने ही वाला है, और थोड़े ही दिन रह गया, अरे बाप रे बाप, अभी मार दूं, आज मार दूं, गुस्से होकर तुरंत क्रोधित होकर कांप चल पड़ता है, चल पड़ता है चार कदम आगे, तलवार उठा करके, फिर मन में आता है, बाप रे बाप, हरे कंस समझ लो, पता है तुझे, पुराण सुना था ना, पढ़ा था ना, नहीं, हाँ, हिरण्यकशिपु महादैत्य था, आपने सांप ने आपने बेटा प्रहलाद था, उसको मारने के लिए खड़ग उठाकर चल पड़ा, अरे खंभा में निकल पड़ा सिंह, खंभे से, ये तो दोनों ही पति पत्नी बैठे हैं, खंभे क्या है, उनसे ना निकल पड़े, बाप रे बाप, मत जाओ, क्या पता ये हरि का कोई ठिकाना है, परम माया भी है, उनके बीच सभा भवन में जो खंभे से निकल पड़ा, वो आधा लायन आधा म्यान, उनका कोई ठिकाना नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, बाप रे बाप, पसीना उतर गया उनको, जा करके अपने भवन में बैठा, इतने डर गया था, उनके दोनों पत्नी आए, प्रभु जी क्या हो गया, हाई टेंशन, पानी लेकर आए, थोड़ा पानी पी लीजिए, पानी लेकर के सामने लेकर के उनके पत्नी, तब तो उनके दोनों पत्नी, आप नहीं, निजी उनके खुद की पत्नी, विवाहिता पत्नी, डर के मारे पति की अवस्था देख करके जलपात्र लेकर आते, थोड़ा पानी वानी पिला लेंगे, खुद मसाज कर देंगे, क्या हो गया उनका, ऐसे वो लेकर आए, उनकी पत्नी को और देखा, ऐसे उठकर खड़ा होकर देखा, वो डर गई जलपात्र, हमारे और कहीं कि वैसे देख रहे हैं, हम कहा जाए इसको देख रहे, कंस तलवार पकड़ लिया हाथ में, वो तो डर के पानी फोड़ कर भाग गए पीछे कदम लेकर के, ये हमारे क्या हो गया, हम तो आपके दासी हैं, भागे डर के मारे अपने घर में कबाड़ बंद कर दी अंदर से। कंस सोच रहा था अपनी पत्नी की देख करके, क्या पता नहीं ये हरि कहीं भी आ सकता है, वो स्त्री भी बनी थी बिल्कुल देव दानव की, मैं काल में भी था, उनकी याद आता पहले जन्म के बाद, मैं खुद था, हम असुर लोग के सामने वही देवता बना था, इमीडिएट मेकअप कर स्त्री बनकर आ गई, क्यों ना हो ना हमारे पत्नी के रूप में आ जाए, क्या पता वो मेरे पत्नी है कि वो ही है। वो तो स्त्री बनने में प्रैक्टिस था उनका, वो कभी भी कौन बन सकता है, वो खींच लिया तलवार स्त्री को देख कर, वो तो भाग गई अपने अंदर से कवाड़ बंद करके बैठी, बाप रे बाप, हम नहीं जाएंगे, भले फास्टिंग करे मरे, हम नहीं जाएंगे उनके सामने। ये हमको ऐसे देख रहा है, मारने के लिए दौड़ रहा है, भाग गए, पत्नी बैठ गया, वो भी मेरे पास नहीं आना चाहती है, आके बैठ गया, सचमुच उनका कंठ सूख रहा था, पानी पीना चाह रहा था, जल पात्र की ओर देखा, जल पात्र को देखा, हाथ में उठाया पानी पीने के लिए, झुम करके फेंक दिया, बाप रे बाप, भरी उसका कोई भरोसा है हरि का, वो तो पहले सत्यव्रत मुनि के अंजलि में एक छोटा सा सरफरी मछली होकर आया था, अंजलि के जला के अर्घ्य जल देने के समय आया था, उसी में आ गया था, उसमें महामत्स्य बन करके प्रकट हो गया। बाप रे बाप, ये जल पात्र में मछली ना बन जाए, फेंक गया जल पात्र, पी नहीं सका, कंठ सूख रहा है प्यास के कारण, तब भी पी नहीं सका, फेंक दिया, खड़ा हो गया, खड़ा होकर के पीछे चला गया, नहीं घर में नहीं रहूंगा, बाहर चला जाऊंगा, अब घोड़ा निकाला उसने, गाड़ी में बैठ करके चला जाऊंगा, थोड़ा सिटी में घूम कर आऊंगा। घोड़ा की ओर देखा, घोड़शाला में जा करके चौंका, बोला पता नहीं इस हरि का कोई भरोसा थोड़ी है, वो तो कभी मछली कभी कछुआ कभी सींग कभी सुकर कुछ भी बनता, अभी घोड़ा ना बन जाए, बाप रे बाप, घोड़ा भी नहीं चढ़ूंगा। वाकर आ गया, घर में आ गया तो भी रात हो चुका था, बोला सो जाता हूँ, स्विच ऑफ कर दिया लाइट, सो गया। सो करके कहाँ नींद आता है, काल तो ग्रास आ चुका है और चिंता आ चुका है, वहां पे देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, उनके चिंता उनको ग्रास कर चुका था, कंस साक्षात भय था, भय से भयभीत हो रहा था, लाइट अप करके आंख बंद कर लिया, नहीं खोलूंगा आंख, नहीं बंद के जबरदस्ती आंख बंद करके रखा, लाइट बंद कर दिया, एक बार साइलेंट सो जाऊंगा, जैसे सोने का आसन सिखाते हैं लोग, शवासन, शवासन किया, वो प्रैक्टिस किया था पहले आसन, आसन शवासन करने लगा, लेकिन शवासन करने से किया होगा, ये मनासन नहीं जा रहा है। मन में नहीं जा रहा है, मन से धीरे धीरे आंख खोला, लगा कि लाइट जला कैसे, लाइट जला जैसे पूरा लाइटेड देखा, और खड़े हो गया, बोला नहीं घर में नहीं रहूंगा, बाहर में थोड़ा जाऊँ वॉकिंग करता हूँ, नींद नहीं होता है, चला गया बाहर। बाहर जा करके बगीचा में, रात हो चुका था, ओस गिर रहा था बगीचा में, जाकर बगीचा में थोड़ा लान में चलने लगा, लान में चलने लगा, ओस गिरा था, गिल्ला था, उसमें पैर में चप्पल भी नहीं पहना था, चल रहा था लेकिन लग रहा था गिल्ला नहीं हो रहा है, पैर गिल्ला नहीं कर रहा है, गिल्ला तो है सारे वरिष्ठ पर गिल्ला तो है, लेकिन पैर क्यों गिल्ला नहीं है, पानी नहीं लग रहा है, पानी क्यों नहीं लग रहा है, इधर उधर देखा, देखा कि पेड़ के पत्तल सब दो दो दिख रहा है, दो कैसे हो गया, ये रात रात से फटके कैसा सारे, सब ऐसे अद्भुत दृश्य देखने लगा, इधर देखा ये दिख रहा है, पानी दिख रहा है गिल्ला, लेकिन पानी उसमें नहीं लग रहा है, देख रहा है वो गिल्ला नहीं हो रहा है, परेशान हो गया, बोला ना यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, घर में वापस चला गया, घर में वापस जा करके सोया, अद्भुत स्वप्न आया, स्वप्न आ रहा है कि कोई आकार के उनका मस्तक काट रहा है, गला काट दिया उसका, चिल्ला कर उठा, हैं गला काट लिया, खड़ग खींच लिया, खींच कर धीरे से हाथ उठाकर उन्होंने सर को टटोला, है कि नहीं अपने प्लेस में, है कि नहीं, मैं तो बात तो कर रहा हूं, मेरे सर बात है कर रहा है कि कौन और कर रहा है, धीरे से हाथ उठा करके लगाया, सर तो है, सर तो अपना जगह में है, अरे वो बेकार देख रहा था, अरे दिखाई पड़ा दो सर हो गया, एक ही तो सर था मेरा, दो कैसे हो गया, और फिर हाथ उठाया, हाथ उठा, लगता है कि दो, लगता है दो सर हो गया क्या, अरे आईने के पास गया, जाकर देखा तो चार सर दिखता, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तोड़ दिया आईना को, बोला नहीं देखूंगा उसको। तो ऐसे पूरे दिन रात ऐसे परेशान, ना खाने का ठिकाना है, ना पीने का, ना सोने का, ना चलने का, ना जाने का, ऐसे परेशान हो गया, पत्नी भी परेशान, सारे राज पार्षद परेशान, मंत्री संतरी सब परेशान है, क्या हो गया महाराज का। वो बड़े बड़े इमीडिएट बुलाया गया डॉक्टर, सुबह सुबह स्पेशलिस्ट को बुलाया गया, मेंटल साइकेटिस्ट, साइकेटिस्ट सब आए, आकर के बोले साइको पेशेंट हो गया, उन्होंने कुछ टेस्ट किया जाए, वो बोले पास में नहीं जाएंगे, हम भी डर रहे हैं, कुछ करे, दूर से लक्षण देखे, बड़े बड़े विशेषज्ञ सब आए थे, स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ सब आकर के सारे लक्षण पता लगाए, सब देख करके डिसीजन लिए, वो तो सीवियर केस, क्या न भय उन्माद ग्रस्त हो गए, वो उनको बिल्कुल पेशेंट हो चुके, भय के कारण उन्माद पागल हो चुके हैं, भय के कारण पागल, यही से भय लग गया है, भय कैसे छूटेगा, हम कैसे छुड़ाएंगे, हम ही उनको देखकर भय बदल दो, हम ही खुद डर रहे हैं उनको। हमारा और कुछ एक्शन ना ले, और वो डर रहा है, किसको डर रहा है, क्यों डर रहा है, ये तो सब महाप्रताप ही पराक्रम ही है, क्यों डर रहा है, क्या डर रहा है, क्या किसको पता, अब तो वो भी चले गए, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे, कोई तेल दिए मैसेज करो, मैसेज कौन करेगा, पास में जाएंगे तब मैसेज करेंगे, इंजेक्शन चढ़ाओ, पास में जाएंगे तभी टैबलेट खिलाए, सिर्फ कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे उपाय है दवाई जो दूर से फेंके काम कर जाए। अरे ये चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, पास में तो जाना ही पड़ेगा, अंदर नहीं खिलाएंगे तो ऊपर से मसाज वसाज कुछ तो करेंगे, सर में तेल घसो कुछ तो करो, मसाज में काम चल जाए, लेकिन पास में जाने के डरते हैं और इसे कौन सा दवाई करे दूर से फेंके। कोई इस दशा में कंस तो दिवा रात्रि जहां देखा, जल में स्थल में आकाश में खाद्य में पेय में पेड़ में पौधे में घोड़े में हाथी में गाय बछड़े सभी में उनको हरि दिखाई पड़ रहा है, हरि दर्शन सर्वत्र जहां दृष्टि पड़ रहा है उनका, जहां उनका हरि दर्शन कर रहा है, तो बड़े बड़े व्यासदेव आदि दार्शनिक चिंतक बैठकर सोच रहे हैं, सांडिल्य मुनि गर्गाचार्य आदि चिंतित होकर सोच रहे हैं, कुलगुरु आदि सब चिंतित हो रहे हैं, क्या कंस के हरि दर्शन क्या सत्य है या मिथ्या है, कैसे मिथ्या हो सकता है, कैसे मिथ्या हो सकता है। भगवान स्वयं गीता में बात कहते हैं, जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब में मुझको देखता है वो मेरा है, मैं उनके हूं, ये भगवत वाक्य है, उसको कैसे डाला जा सकता है। आज कंस बिल्कुल भगवत वाक्य के पक्के एग्जाम्पल नमूना है, जहां जहां दृष्टि पड़े तहां स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है छे तारा इष्ट देव स्फूर्ति। ये उनका इष्ट देव नहीं थे, भय देव थे, उनके प्राण हंता महाकाल थे, इष्ट देव तो नहीं थे दुष्ट देव थे, लेकिन फिर भी उनके दर्शन होता था, समग्र हरि दर्शन सर्वत्र कर रहा था कंस, वो झूठ नहीं था, वही वेद सत्य प्रमाणित सत्य था। उसको कैसे कोई मना कर दे कि कंस ठीक नहीं देख रहा था, पागल था। कंस पागल नहीं था, पागल हम लोग हैं, पागल हम लोग हैं जो हमको ऐसे सब दिखाई पड़ रहा है, ये वस्तु सब मिथ्या है, सारे मिथ्या को सत्य हम देख रहे हैं, लेकिन कंस आज इस स्थिति में आ चुका था, उनको सत्य दर्शन हो रहा था, सत्य सत्य को दर्शन कर से समर्थ हुआ हो रहा था, इसलिए सारे संसार उनको बोलता है कि उन्मादग्रस्त पागल हो गया, लेकिन पागल कोई नहीं है, पागल हम ही सब है, सचमुच पागल हम ही है, इसलिए हम उसको कहते हैं इसे ऐसा थी नहीं, इस प्रकार सत्य को दर्शन कर रहा था। अब कंस का तो भोजेंद्र भोजराज की राजसभा और राज परिषद में राजभवन में इस प्रकार के हाल, अब जेल में क्या हो रहा है, जेल में तो तांता लगा है देवताओं के, करोड़ों संख्या में है, छोटा सा जेल जाम पूरा खचाखच भरा पड़ा है, इधर थोड़ा एडजस्ट करो और आगे आओ और थोड़ा आगे आओ, हाँ सब देवता देवियां सब आते हैं भर भर करके, आज हम पूजा कर लें, पता नहीं अब प्रकट होकर दर्शन होगा कि नहीं होगा, अभी तो स्तुति कर लें पूजा कर लें, ब्रह्मा से भी साथ में हैं, उन्हीं के चलते उन्हीं के साथ रिलेशन है, शायद हमारा दर्शन हो जाए, इसी के चलते खूब भीड़ की भीड़ झुंड देवता देवी आए हैं, आकर पूजा करते हैं। ब्रह्मा इंद्र रुद्र वरुण सूर्य चंद्र सब मिल करके आज ब्रह्मा जी मुखिया है, सबके सामने पूजा आदि करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, अब समय आ रहा है प्रभु के, तो आज फाइनल प्रेयर प्रार्थना करेंगे, अब प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। इस प्रार्थना से देवताओं के गर्भ में भगवान की स्तुति, कई कई लोग मुझे बोलते हैं, उस दिन एक पूछ रहा था, नहीं तो हम तो बोले हैं सुने हैं कि भगवान तो हमारा तरह नहीं है, भगवान देवी की माँ के गर्भ में थोड़ी आए थे, वो तो ऐसे लोग बोलते हैं, वो तो सीधा प्रकट हो गए डायरेक्ट, देवी की माँ के गर्भ में नहीं आए थे। अरे मूर्ख कहीं के, आप ज्यादा जानकार हैं, सारे ब्रह्मा तक देवता उनके घर में घुस करके गर्भ को पूजा किए, गर्भ में नहीं थे, इतने बड़े अध्याय वास्तव में गर्भ की स्तुति किए, गर्भ में नहीं थे, बिल्कुल गर्भ में थे, लेकिन हमारे जैसे गर्भ में नहीं थे, हम जैसे गर्भवास करते हैं ऐसे गर्भवास नहीं था, ये परम चिन्मय आनंद घन मूर्ति थे, वो जिस गर्भ में आ गए, जस देव की माँ तो इतने आनंदित थी, इतने आनंदित थी, कोई उनके सामने आए उनको आनंद लोटपुट हो रहा था। वो लोग तो कहते हैं, सुखदेव जी उपमा देते हैं, जैसे बहुत बड़े आग के पिंड अग्नि पिंड को कोई ढाक करके रखे, बड़े कमरे ढाक करके रखे, कोई ईंधन के द्वारा बड़े लकड़ी फेड़ कर ढाक कर रखे, अग्नि का प्रकाश उनके ताप उसना बाहर नहीं जा पाता, ढांका है। ठीक इसी प्रकार देवी की मां के गर्भ के अंदर महातेजस्वी महाप्रकाश सख्यात परम पुरुष भगवान प्रकट हो चुके हैं, लेकिन उनके प्रभाव कंस के कारागार के अंदर देवी का गर्भ प्रकट नहीं हो रहा है। इसी परम आनंद घन के प्रभाव को कोई आनंदित नहीं हो पा रहा है। ऐसे कहने का दूसरी तात्पर्य है, जैसे कोई बहुत प्रचंड अग्नि को कोई ईंधन कोई आकार से कोई ढांक करके रख दे, उसके लाइट एंड हीट बाहर नहीं जा पा रहे, सत्य बात है, लेकिन कब तक? थोड़ी देर में वो प्रचंड अग्नि उस बंधन को जला डालेगा, ध्वंस कर डालेगा, कोई भी उसको हो उसको पिघला करके जला करके फिर बाहर निकल पड़ेगा उसका तेज। ठीक इसी प्रकार अभी कुछ समय तक ये जेल में बंधा कर रखा है, गर्भ के अंदर है, लेकिन थोड़ी देर लगेगा निकलने में, ऐसे प्रकाश निकलेगा, सारे दीवार फाड़ करके जेल फाड़ करके वही महाद्रोही कंस को ही मार डालेगा। और ज्यादा टाइम नहीं है, ये वो सब हो जाएगा और पूरे जगत को परमानंद से मग्न कर देगा, सब उनके आनंद से आनंदित हो जाएंगे, वो होने वाला ही है, अभी की कवर अप है। ठीक इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे ज्ञान खल है, आपने जो भी ज्ञान है समझ है किसी को बोलता नहीं है, आपने अंदर रखा है, रख रख कर मर गया, ज्ञान बेकार हो गया। ठीक इसी प्रकार ये कंस महा क्रोधी द्वेषी, आपने द्वेष के कारण ये परमानंद घन देवी के गर्भ में प्रकाश पाए हैं, उन्हीं को जेल में डाल करके बंद करके कबाड़ बंद करके रखा है, लेकिन रखने से क्या हुआ, जैसे ज्ञान रखे रखे नष्ट हो जाए, ऐसे कंस ही नष्ट हो जाएगा, उसके प्रभाव से नष्ट होने के बाद में फिर प्रकट हो गया आनंद। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवता लोग ने क्या किए, देवता लोग आ करके भली प्रकार से पूजा किए, प्रणाम किए, अब स्तुति किए, स्तुति करके थर थर हाथ जोड़ के देवताओं ने स्तुति करते हैं, स्तुति में सबसे पहले स्तुति देवताओं की ओर से निकलता है। सत्य व्रतं सत्य परं त्रिसत्यं सत्यस्य जोनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नम् सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। अभी शरण जाने की बात कह रहे हैं कि सारे देवता होलसेल में शरण लेना चाहते हैं, इंडिविजुअली नहीं, टुगेदर शरणम प्रपन्ना, हम सभी आपके शरण में जाने चाहते हैं। देवी की मां को नहीं कहते हैं, अभी देखने अनसीन गर्भ के अंदर जो हैं उनको बोलते हैं। हम तो किसको प्रार्थना करते हैं सामने जा करके, अभी भीड़ लगता है सामने में, लेकिन वो सामने दिखाई नहीं पड़ता है, सामने जाने पर भी कुछ नहीं देखेगा, गर्भ के अंदर हैं, लेकिन फिर भी वो जान चुके हैं वो हैं, प्रभाव बिल्कुल छिटक रहा है चारों तरफ, ब्रह्मलोक पर्यंत प्रभावित हो रहा है कि वो आ चुके हैं, इसलिए ब्रह्मलोक से भी खींचे खींचे आ करके गर्भ के सामने हाथ जोड़ करके ये बोल रहे हैं। सबसे पहले ये प्रार्थना करते हैं सत्य व्रतम, भगवान को संपूर्ण ब्रह्मादि के देवता अपने स्तुति में सबसे पहले कहते हैं, हे प्रभु आप सत्य व्रतम, सत्यव्रतम, सत्यव्रत में कहते हैं कि जो जिनका व्रत हमेशा सत्य है, जैसे आज आप व्रत धारण किए हैं ना कि कम से कम जब तक परेशानी ना हो जाए तब तक तो पानी नहीं पीऊंगा, भले 10 बजे 11 बजे क्यों ना हो, है ना, यही है ना आप बोल रहे थे शाम तक रात तक, लेकिन यही सत्य है कि जब तक ज्यादा प्रेशर ना हो जाए, ज्यादा टेंशन नहीं हो, तब तक तो खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, लेकिन फिर खा पी लूंगा बाद में ज्यादा परेशानी होने से। अब जो जो बड़े धैर्यशाली हैं वो लोग तो बोलेंगे हम रात को 12 बजे तक तो कुछ भी हो जाए, भजे सिलसिले से हो जाए, हम तो खाएंगे पियेंगे नहीं है, लेकिन कुछ लोग मुझे सेवा करना है, इतने सारे सेवा है, सेवा परम धर्म है, मैं सेवा तो करूंगा, पानी पीकर कर लूंगा, नहीं हो तो जूस पीकर कर लूंगा, जूस तो आज मिलेगा ही, सप्लाई तो मिलेगा, हाँ फ्री मिलेगा, सब फ्रूट्स भी जूस भी सब मिलेगा ना, हाँ मिलेगा, तो इसीलिए खा पीकर करेंगे कोई बात नहीं। तो तो इस प्रकार से जिनके व्रत है, जिसे व्रत धारण किए हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मादि के देवता भगवान को सबसे पहले कहते हैं, प्रभु आप भी व्रतधारी हैं, आप भी व्रत धारण करते हैं, मैं कौन सा व्रत करता हूँ, मेरे जन्म जिसमें मैं व्रत थोड़ी धारण करता हूँ, व्रत आप लोग रखते हैं, मेरा हैप्पी बर्थडे होगा, आपने व्रत रखे, मैं क्यों व्रत रखूंगा, नहीं नहीं आप व्रत धारण करते हैं, क्या आपके व्रत क्या है, आपके व्रत ही सत्य व्रत है, इसलिए सत्य व्रत कहता हूँ, जिसका व्रत सत्य है उनको सत्य व्रत कहते हैं। क्या व्रत सत्य व्रत आपका है, कौन सा व्रत सत्य करते हैं, तो बोलते हैं कि आपके ये व्रत सत्य है, आप स्वयं आपने मुख से ये बात कहे थे, सकृदेव प्रपन्नायम तब अस्म इति जाचते। ये श्लोक भगवान राम के मुखनिष्ठ वाणी है, श्लोक है, सकृत एव प्रपन्नायम तब अस्म इति जाचते ददामि अभयम तस्मै सर्वदा एतत् व्रतं मम। भगवान कहले ये मेरा व्रत है, विभीषण शरणागति प्रसंग में ये भगवान स्वयं कहे, ये मेरा व्रत है, क्या मेरा व्रत है, ना जो कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति एक बार, सकृत मतलब जस्ट वंस, एक बार, वंस इन हिज लाइफ टाइम, उनके जीवन में कोई एक बार आपने हृदय खोल करके हाथ उठाकर बोल दे, हे प्रभु, हे राम, हे कृष्ण, हे श्याम, मैं आपका हूं, तब अस्मि इति जाचते, मैं आपका हूं, ऐसे जो एक बार बोल दे बास, वो तो उनके पूरे जीवन काल में एक बार ही बोलेगा, उनको एक बार बोलने दो, एक बार भी भले भल्लीम कम करके बोले, घर के अंदर बोले, बाहर बोले, मंदिर में बोले, साउंड करके बोले, मन में बोले, जिनका बोलने का शक्ति नहीं, भाव भाषा में बोले, सांकेतिक भाषा में बोले, कैसे भी प्रकाश करे, हे प्रभु तब अस्मि, मैं आपका हूं प्रभु, इतना आप मेरे हैं ये भी नहीं बोलना पड़ेगा, केवल इतना ही बोलेगा, क्या मैं आपका हूं, तब अस्मि, मैं आपका हूं, इतना को ही बोल दे, तो भगवान कहते हैं उनको इतना बोलने पर मेरा व्रत चालू हो जाता है, मैं व्रत धारण किया हूं, क्या व्रतम ना अभयम ददामि तस्मे, वो तो डर के मारे एक बार बोल लेगा, मैं उनको सदा सदा के लिए पूरे जन्म पर्यंत सर्वत्र उनके भय से बचा दूंगा, ये मेरा व्रत है, ये व्रत धारण करता हूं। ऐसे स्वजन स्वभक्त परिपालन रक्षण पोषण जिसका व्रत है, मेरे अपने जन मेरे भक्त को मैं पालन करता हूँ, पोषण करता हूँ, रक्षा करता हूँ, उनको आनंद प्रदान करता हूँ, ये मेरा व्रत है, सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए मेरा व्रत है, ये व्रत को स्वजन परिपालन व्रत धारणकारी आप सत्य व्रत है, इसलिए सबसे पहले सारे देवता बोलते हैं आप तो व्रत धारण किए हैं, इसलिए हम तो डरेंगे क्यों, व्रत आपका है, हम आपको डर से मुक्त करेंगे, भय मुक्त करेंगे, इसलिए सबसे पहले बोलते हैं सत्य व्रतम, सत्य व्रतम, सत्य परम, सत्य परम कहते कहते हैं कि अभी तक इसी दुनिया में प्राकृत जगत अप्राकृत जगत जितने जगत और हो सकता है, जितने सत्य वस्तु का हमारा एक्सपीरियंस है, जिंदा वो नहीं भी है, जितना सत्य जहां पर है, सबसे बढ़कर का सत्य को परसत्य कहा जाता है, परम सत्य है ना, नहीं इससे परे, इससे परे, इससे भी परे, तो जितने सत्य हो सकता है हमारा कल्पना मन जहां तक जा सकता है सत्य के बारे में, ये सबसे भी जो परे की सत्य है वही परम सत्य है, सत्यम परम उनका नाम है, आप परम सत्य है, सत्य परम, आपसे बढ़कर के कोई और सत्य हो ही नहीं सकता, परम सत्य आप ही है, सत्य परम त्रिसत्यम, ये केवल श्लोक ही सत्य सत्य करते हैं, त्रिसत्यम सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, त्रिसत्य कहकर कहते हैं कि ये तो सत्य पर है, त्रिन सत्य क्या है, क्योंकि आपके तीन चीज सत्य होता है, प्रास्य शक्तिर विविधेयो सूयते, बोले आप शक्तिमान है, उन अनेक शक्ति से मेन तीन शक्ति है, थ्री फेज में काम होता ना, थ्री फेज मेन है, वो थ्री फेज क्या है, स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रियाच, ये जो आपके तीन फेज है, आपके ज्ञान, आपके बल, आपके क्रिया, ये हमेशा सत्य है, यही सत्य है, स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रियाच, तो इसको ये अर्थ में कहते हैं कि सकते हैं आपके कार्य और कारण सत्य है, आप स्वयं कार्य है, सब कारण है, स्वयं कारण है और कोई आपके परे नहीं है, आप ये सत्य है, स्वयं कार्य कारण है आप और कोई आपके कार्य कारण नहीं है, ये प्रथम सत्य। तुम्हारे समान कोई हो नहीं सकता, आपके समान कोई और हो नहीं सकता, ये भी सत्य है, नोबडी इज कंपेयर टू यू, आपका कंपैरिजन है ही नहीं। और तीसरा सत्य क्या है, नमत्त परतन, आपके बढ़कर ही तो हो ही नहीं सकता कोई, जो आपके समान ही नहीं सकता आपसे बढ़कर कैसे होगा, ये तीन महासत्य है। आ समझ में, जिनका कार्य कारण स्वयं है और कोई हो ही नहीं सकता, उनके कार्य की उनके कारण दूसरा कोई वही स्वयं है, उनका अलग कोई हो ही नहीं सकता, जिनके समान ही कोई नहीं हो सकता, जिनके परे भी कोई हो नहीं सकता, तो उनके ज्ञान और बल उनके क्रिया वो हमेशा सत्य है, इसलिए त्रिसत्यम उसके बोलते हैं सत्यस्य जोनिम, सत्यस्य जोनिम, जोनी मतलब सोर्स, जहां से जो चीज निकले उसको उसको जोनी कहा जाता है, जैसे भगवान गीता में एक शब्द कहे हैं, यही संस्पर्शज एव होगा दुख जोन एवते, जो स्पर्श सुख है, जो हम लोग सुख भोग करते ना, हमारा स्थिति ही ऐसा है, स्पर्श कर ही सुख प्राप्त कर पाएंगे, बिना स्पर्श के सुख अनुभव कर ही नहीं पाएंगे, बिना टच हम सुखी नहीं हो सकते, चाहे खाने का भी वस्तु हो तो टच करेंगे नहीं तो देख कर तो स्पर्श सुखम भगवान खोल कर बढ़ते हैं, जो स्पर्श के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है ना वो क्या है, दुख की जोनी है, मतलब वो सुख नहीं निकलता उसमें, क्या निकलता है, दुख निकलता निकलता ही रहता है, सोर्स ऑफ दुख, स्पर्श करके हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे स्पर्श किया सुख के लिए, भाई सुख तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या दुख और थोड़े देर मिलेगा, क्या मिलते ही रहेगा, दुख जो नहीं एवते, निश्चित करके दुख के जो नहीं हो जाता है स्पर्श सुख जो होता है, इसीलिए आद्यंतवंत कौन्तेया न ते सु रमते बुधः, बुद्धिमान लोग इसमें फंसते नहीं है स्पर्श सुख के चक्कर में, क्योंकि केवल दुख दुख ही देता है, उसमें दुख जोनी बन जाता है। ठीक इस प्रकार सत्यस्य जोनिम, इसके कहने का स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है, सत्य जहां से निकलती है, सोर्स ऑफ ट्रुथ, यू आर दी सत्य के जननी, सत्य आपसे निकलता है, सत्य का और कोई आश्रय नहीं, आप सत्य के परम आश्रय है, सत्य जब कहां से निकलता है तो आपसे निकलता है और कहीं से सत्य का आश्रय नहीं, आप सत्य से जोनी है। इसके अर्थ में और सत्य से जोनी न, आपके जितने अवतार हुआ है सब सत्य हैं, सारे अवतार के जोनी आप हैं, आप स्वयं अवतारी हैं, इसलिए सब सत्य अवतार के सोर्स आप स्वयं अवतारी पुरुष श्री कृष्ण भगवान है, सत्य से जोनी आप सभी सत्य के जोनी है, सभी सत्य आपसे निकलता है। निहितम च सत्य, जो सत्य जिसमें निहित है उनके अलावा कोई सत्य हो ही नहीं सकता है, निहितम च सत्य बोलते हैं जो सत्य लोक हैं, द्वारका मथुरा गोकुल वैकुंठ आदि यही सत्य है, ये द्वारका दिल्ली गुड़गांव ये सब सत्य नहीं है, ये तो अभी बनाया कब तक बनेगा पता नहीं, एमसीडी खत्म वो खत्म नक्शा, तो बोलते हैं लेकिन ये जो है वो था है वो रहेगा, ये निहितम च सत्य क्यों निहित है, क्योंकि आप उसमें है, आपके स्थान है, आप स्वयं सत्य पुरुष है, आप जहां पैर धरेंगे वही निहितम च सत्य, सत्य उसी में निहित हो जाएगा। उसी के चलते एक कथा मेरा याद आता है महाभारत का, महाभारत युद्ध में अब लगभग 15 दिन व्यतीत हो चुका था, अब सेनापति पहले तो भीष्म वो आउट हो चुके थे, अब द्रोण आए थे, 11 दिन में द्रोण अपॉइंटमेंट हुए तो 4 दिन तक वो लड़े। द्रोण जब आउट नहीं हो रहे थे, अब बड़े भारी पराक्रम लगा रहे थे, तो एक बार अर्जुन बोला कि गुरु जी के सामने क्या करूं, तो हो नहीं सकता, तो भारी मीटिंग के तो बोले कि वरदान तो ही दिया था ना आपको, ब्लेसिंग था ना, तो भगवान बोले एक बार जाकर गुरुजी को पूछो ना, तो एक बार अर्जुन गए, कृष्ण भी साथ में गए थे, लक्ष्मण बोले आपको आगे कर दे, जाके पूछो सार को। बोले सार द्रोणाचार्य फिर भी आशीर्वाद दिए। बोले सर क्या ना, हमें विशेष बात पूछना है ना सर। क्या ना सर, आप जब लड़ेंगे मैं तो आपके सामने, आपको तो कोई हरा नहीं सकता ना। फिर अब क्या जानना चाहते हो ना, आपको हराने का उपाय आप खुद बता दो ना। यही आपसे पूछने आया हूँ सर, हाउ कैन आई डिफीट यू, यू प्ले स्टेज मिंग फॉर्मूला। द्रोणाचार्य खुश हो गए, बोले सही बात है, मेरे हाथ में एक छोटा सा अस्त्र भी रहे, मुझे सकल देवता दानव मिलकर के परास्त नहीं कर सकते, इस प्रकार अस्त्र कौशल की ज्ञाता मैं हूँ। तू मुझे, तू मेरा तो स्टूडेंट है, तू क्या मुझे परास्त करेगा हाँ? लेकिन तू आज मुझे स्वयं आकर पूछ रहा है, तू मेरा प्रिय शिष्य है, सब कुछ मैंने बता दिया, वो भी मैं बता देता हूँ, सुन लो, सुन लो मेरे डिफीट का सूत्र क्या है। जब मेरे हाथ में अस्त्र रहेगा कोई नहीं डिफीट कर सकता, लेकिन मैं अस्त्र त्याग दूं तो कोई मुझे डिफीट कर देगा, अस्त्र छोड़ दूंगा, कोई मुझे थप्पड़ मारे मारोगे, लेकिन अब अस्त्र कब त्यागेंगे ना, मेरे एक लौता बेटा है, मैं बहुत अटैच्ड हूं मेरे बेटा से, मेरे बेटा के चलते मैं ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय बन गया, मेरे कास्ट चेंज कर दिया मेरे बेटा के चक्कर में, पता है ना, दरिद्रता के चक्कर में, उसी के चलते मैं बहुत आसक्त हूं मेरा पुत्र अश्वत्थामा से, जानता हूं कि ये चिरंजीवी है, लेकिन फिर भी बाप होना बहुत आसक्त होना मेरा डाउट है, कुछ उनका गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए बहुत चिंतित हूँ। अगर उनका कोई इस प्रकार संवाद मुझे मिल जाए, सबूत कुछ हो जाए गड़बड़, तो मैं क्यों लड़ूं, उसी के चलते तो मैं कुछ किया था, अस्त्र त्याग दूंगा मैंने। अर्जुन को पता चल गया, बोला ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अश्वत्थामा को कुछ गड़बड़ करने से बूढ़ा छोड़ेगा अस्त्र हाँ। तब जाकर के कृष्ण को बताया कि सार ने इसे इसे बताया, कृष्ण बोले नो प्रॉब्लम, आप ही करते हैं, आज ही करते हैं, क्या ना निकला करते हो, अश्वत्थामा मर गया करते, अश्वत्थामा मरेगा ही नहीं, चिरंजीवी है, अरे कुछ करते हैं हाँ? हो हल्ला करेंगे, वो बूढ़ा मान जाएगा और क्या, चिरंजीवी है कहाँ गया, लेकिन अश्वत्थामा मरेंगे, बोले गायब कर दिए, हट गया, कहीं गया है ही नहीं, वो तो कैसे करेंगे, सचमुच हो तो महारथी है, उसको कैसे करेंगे। अरे भैया अश्वत्थामा क्या है, भीमसेन को बुलाया मीटिंग, बोले भीम एक जो उनके अश्व है हाथी है उनका नाम अश्वत्थामा ना, हाँ है अश्वत्थामा, बोले उसको मार दो, अभी मारता हूँ उसको, मार करके हला करोगे, मार दिया करके, हाँ मार दिया अश्वत्थामा को, मार दिया करके हला करो, और सब अनाउंस करेंगे, वो पूरा अनाउंस लाउड स्पीकर लगा कर वॉल्यूम दे करके अनाउंस, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, मर गया कर, भीमसेन जाकर हाथी को मार दिया, उनको क्या एक थप्पड़ मारा मर गया हाथी। अब आकर बोला अश्वत्थामा मार दिया, मार दिया अश्वत्थामा बदमाश बड़ा, ए मेरा सामना टिकेगा, अश्वत्थामा मार दिया, वो हल्ला क्या सब सुने, हे भीमसेन ऐसा बोल रहा है, अश्वत्थामा मार दिया, सारे सोल्जर बोले उसको क्या हो, तो दुर्योधन के भाई को ऐसे पकड़ पकड़ कर मारता है, उसको मार दिया होगा क्या पता। मारने में खूब पछताते हो, वो मार दिया होगा क्या पता, अरे अमर है ना फिर भी मार दिया होगा, उनके सामने तो कुछ नहीं दिखता। वो चिरंजीवी की कमजीवी कर देता है, तो ये भी कुछ कर दिया होगा, मार दिया होगा, हल्ला गुल्ला हो तो हल्ला गुल्ला सुन करके बुढ़ा के कान में आया, वो लड़ रहा था, पूछा व्हाट हैपेंड, ना सर वो अश्वत्थामा मर गया, मैसेज ऐसे आ रहा है, चौंका चौंक करके बिल्कुल इधर उधर व्यथित हो गए द्रोणाचार्य, उसको पूछे और जिसको पूछे, जिसको पूछे वो तो हल्ला तो वही हो रहा, साउंड तो हम ही सुन रहे, मीडिया में एडवर्टाइजिंग में वही भी आ रहा है, टीवी पर टेलीकास्ट आ रहा है, मैसेज आ रहा है, सब वही आ रहा है, मैसेज में भी आ रहा है, फोरकास्ट में आ रहा है, फोन में भी आ रहा है, सब में पेपर में भी वही आ रहा है, सब आ रहा है। अरे इसी की सच बात है, किसको पूछो किसको, भीमसेन तो अनाउंसमेंट कर रहा है बिल्कुल चुंगा लगा करके, हल्ला कर रहा है, मार दिया मैंने, मार दिया, भीमसेन खुद ही बोलते मार दिया। द्रोणाचार्य बोले नहीं 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 मेरे विश्वास नहीं हो रहा, क्या बोले मेरे प्रिय शिष्य, सामने तो अर्जुन आ रहा था ना उनका, बोले उनको पूछूंगा, तो अर्जुन के बुलाने को, अर्जुन को पूछने के लिए गए, कृष्ण समझ गए, बोले अर्जुन सावधान, बूढ़ा आ रहा है, तुम्हारा गुरुजी आ रहे थे पूछने के लिए, ना गुरुजी के सामने में छुटके से बोलूं, भीम भैया मछले भैया तो हाथी मारे, अरे पागल बोलना, अश्वत्थामा हाथी का नाम तो अश्वत्थामा था ना, ना हाथी था, अरे तू बोलना, मैं बोल रहा हूँ ना अश्वत्थामा, ना आप बोलने तो मैं बोल दूंगा, मेरे क्या पड़ा है, बोलूंगा हाँ बिल्कुल फुल जोर से बोलना, अश्वत्थामा मरा गुरु जी, अश्वत्थामा गया। आप जैसे ही द्रोणाचार्य पूछने आए, पूछने से पहले अर्जुन बोले गुरुजी एक्सक्यूज मी, बड़े दुख की बात, आई एम सॉरी। द्रोणाचार्य तो वहीं से मुरझा गए, आई एम सॉरी देख करके बोले क्या गड़बड़ ना, आई एम सॉरी सर। आप गुरु भ्राता हमारा, अब क्या कहूं, अब ज्यादा बोलना नहीं पड़ा। मझला भैया अब क्या कहूं, अरे ये सत्य है ना गुरु जी, क्या कहूं, दुख की बात है। आप तो बड़े दुखी हो गए, दुखी होकर भी बेचैन हो गए, कैसे हो सकता है। नहीं 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 अर्जुन, कृष्ण बैठा तेरे पास में, बड़ा छलिया है, वही तुझे पढ़ा लिया होगा। सत्यवादी केवल युधिष्ठिर है, मैं जानता हूँ, वो कभी झूठ बोला नहीं, अभी तक बोल ही नहीं सकता, वो भी मेरे स्टूडेंट है, उनको पूछता हूँ। दौड़ करके लड़ाई छोड़ कर भागे युधिष्ठिर के सामने। कृष्ण बोले ये तो गड़बड़ करेगा, ये गड़बड़ करेगा, ये महासत्यवादी है, धर्मध्वजी है, गड़बड़ करेगा। और दौड़ कर गए स्पीड में युधिष्ठिर के पास है। भ्राता युधिष्ठिर महाराज ना क्या हुआ, कृष्ण कैसे आ गए ना, अभी समय आ गया, अब गुरु जी आ रहे हैं, उनको बोलना अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा मरा नहीं, मर ही नहीं सकता, मैं कैसे बोलूंगा, अरे मैं बोल रहा हूँ, बोल दो, क्षमा करे मैं सत्य नहीं, असत्य भाषण नहीं कर सकता मैं कभी भी, अभी तक सत्य बोला हूँ, असत्य के बोला नहीं, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, झूठ नहीं बोलेगा, नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। अरे अश्वत्थामा हाथी तो मर गया ना, हाथी मरा ना, बोल दो ना अश्वत्थामा हत, वो बाद में हाथी, थोड़ा वॉल्यूम डाउन करके बोलना, हम थोड़ा बाजा बाजा बजा देंगे, जब अश्वत्थामा हत वॉल्यूम जोर, हाथी वॉल्यूम डाउन, ऐसे बोल देना। अब फिर भी कैसे बोलूं गुरु जी के सामने, अरे बोलना पड़ेगा, डांट करके जब बोले तब राजी हुआ, पहले तो बिल्कुल मना कर दिया भगवान, जब डांटे कस करके उनको, और भीम और अर्जुन दोनों में बोले बोलना पड़ेगा आपको, तब फिर राजी हुए युधिष्ठिर महाराज। अब जैसे द्रोणाचार्य आकर के उनके भरोसा में पूछे, बोले गुरु जी अश्वत्थामा हत, ओ वॉल्यूम बढ़ा दिए थे, तभी वॉल्यूम कंट्रोल भगवान कर रहे थे। इति गजा, ओ बिल्कुल मेरा डाउन भली, मैं सुना नहीं पड़ा, बाजा फाजा बजा दिए सुनाई नहीं पड़ा, और बूढ़ा तो समझ गया अश्वत्थामा मर गया, और अश्वत्थामा सही था, वो देखने लगे अश्वत्थामा कहाँ ढूंढा हुआ तो कैसे मर गया। भीमसेन ने अश्वत्थामा हाथी को मारने के बाद में, अश्वत्थामा मरेगा नहीं, उनको इतने जोर में गदा को घुमाया, उसके जोर से उनके गदा के घूमने का हवा से अश्वत्थामा उई थी उसी गाड़ी, गाड़ी के साथ रथ के साथ उड़ गया, उड़ गया, रथ में लोड था, लोडेड़ अश्वत्थामा, घोड़े भी लगे थे, वो भी बैठा था, अस्त्र शस्त्र सब लोडेड़ था, रथ उड़ गया, कई जोजन उड़ गया, आउट ऑफ दी कुरुक्षेत्र, पता नहीं अम्बाला हमारा कहाँ चला गया, उड़ करके उड़ा दिए उसको, ये पराक्रम था भीमसेन का, उड़ा दिया रथ सहित, और जितने सारे अश्वत्थामा के साथ थे बोलते हैं यही तो थे, गाड़ी भी नहीं है उसका, घोड़े भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और क्या बोलेंगे, जो उनको जाकर पूछा गया वो तो है ही नहीं आउट ऑफ साइट, बिल्कुल दूर दूर तक खबर लिए है नहीं, उनको उड़ा दिया बिल्कुल वहां से। अब द्रोणाचार्य बिल्कुल अब तो समझ गए कि सच में ऐसा घटना हुआ, मरा नहीं होगा तो भीमसेन पता नहीं उठा फेंक दिया, मार दिया, उड़ा दिया, पता नहीं कहीं डूब गया होगा, क्या होगा, आ करके बड़े दुखित होकर के धनुष बाण छोड़ करके बैठ गए, बिल्कुल ध्यान करके बैठ गए, मेरा बेटा रो पड़े बैठ करके। तभी इसी अवस्था में दृष्टद्युम्न ने जाकर उनका गला काटा था। तो ये तो महाभारत का एपिसोड हुआ, उसके बाद में देखा जाता है, आप लोग जब देखे होंगे कि जब महाभारत खत्म होता है और पांडव के जब महाप्रयाण होता है, जब स्वर्गारोहण होता है, तब देखते हैं युधिष्ठिर महाराज आगे जाते हैं, एक एक करके उनके भाई लोग सब गिरते जाते हैं, नीचे आउट होते जा रहे हैं, केवल स्व शरीर में महाराज युधिष्ठिर जाते हैं। स्वर्ग जाने से पहले पहले कहाँ गए, नरक भी जाना पड़ा, एक झांकी नरक दर्शन करना पड़ा उनको कुछ समय के लिए। तो हमारे तथा कथित महाभारत लेखक लोग, आप जो टीवी के सब लिखते हैं, क्योंकि सत्यवादी परम सत्यवादी युधिष्ठिर महाराज ने एक बार झूठ कृष्ण के चलते बोल दिए थे, इसी के कारण उनको कुछ समय नरक दर्शन करना पड़ा, नरक नहीं गए लेकिन नरक विजिट करना पड़ा नरक को, क्योंकि परम सत्यवादी परम धार्मिक होते हुए कि एक बार किसी के चक्कर में, कृष्ण के चक्कर में आकर के बोल दिए थे, इसी के कारण नरक जाना पड़ा। लेकिन जो वैष्णव आचार्यगण कहते बोले ना 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 वो नरक गए जरूर, कुछ समय के लिए, लेकिन ये कारण नहीं था इसके कारण से। बोले क्या कारण था? बोले असली कारण यही था कि कृष्ण बोले बोल दो, वो सोचे, एक थॉट लेकर सेकंड थॉट में बोले, यही उनको पाप लग गया, इसी कारण से नरक दशा में। क्यों? झूठ बोलने के लिए बोल देते, यही तो प्रमाण करते हैं। कृष्ण जिसको बोलेंगे झूठ हो कैसे सकता है? सत्यस्य जोनिम निहितम च सत्य, जो सत्य के जोनी है उनसे झूठ निकल कैसे सकता है? कृष्ण के मुख से जो वाणी निकलेगा झूठ हो सकता है? लेकिन साधारण धर्म के पालन करने वाले धर्म के राजा वो भी नहीं समझ नहीं पाए, लौकिक धर्म वो परम धर्म को कैसे समझेगा, ऐसे नहीं जा पाए। कभी कभी हम लोग भी पजल्ड हो जाते हैं, धर्मराज भी पजल्ड हो गए थे। लेकिन युधिष्ठिर भीम ना अर्जुन भीम वो भगवत सानिध्य में पजल नहीं हुए, लेकिन धर्म पालन करे सत्यवादी युधिष्ठिर पजल हो गए। कैसे? अरे कैसे, भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, वो झूठ कैसे हो सकता है? परम सत्य का बाप भी वही है, कैसे बोल सकता है झूठ? जो भगवान के मुख से निकले वो झूठ हो कैसे सकता है? सचमुच हम लोग झूठ और सच का परिभाषा नहीं जानते, हम लोग को झूठ का डेफिनेशन सत्य का डेफिनेशन ही पता नहीं है। किसी स्थान में, किसी काल में, किसी परिस्थिति में क्या झूठ है क्या सच है ये हम नहीं जानते हैं। परम सत्य की जोनी जो निहितम च सत्य सत्य व्रतम सत्यात्मकम, वही जानते हैं सत्य क्या है, वही स्वयं सत्य है, उनसे केवल सत्य ही निकल रहा है। ये ब्रह्मादि देवता आज ये खुले आम घोषणा कर रहे हैं, वही केवल सत्य है, सत्य के जोनी निहितम च सत्य, उन्हीं से सत्य निकलता है, उनसे झूठ निकल नहीं सकता, झूठ उनके पास जा नहीं सकता, और जो उनके हो गए उनके पास भी झूठ नहीं जा सकता। तो इसलिए भक्त लोग झूठ बोलने से चलता है, लेकिन भगवान के लिए, आपने लिए नहीं, भगवान के सेवा के लिए अगर कुछ बोल देते हैं चलता है, क्योंकि ये परम सत्य है, वहां असत्य टिक नहीं सकता। अगर उनके सेवा के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए सरासर झूठ अभी भी देखकर बोल दो, वो सारे सत्य में परिणत हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य है, परम सत्य है, झूठ टिक नहीं सकता, झूठ ही सत्य हो जाएगा इमीडिएट, झूठ टिक नहीं सकते उनके सामने। तो इस प्रकार निहितम च सत्य, सत्य में जो निहित है, और सत्यस्य सत्यम, ये कितने बाहर ब्रह्मादि देवता कहते हैं, जो सत्य का भी सत्य है, अभी तक जो सत्य है सारे सत्य के सार वस्तु सत्य है, सारम च सारम च, सार सार निकाल कर किसे निकाले, इससे जितने सत्य है उससे निकले जो परम सत्य है उससे भी सार सत्य है, इसलिए सत्यस्य सत्यम आप ही है, केवल परम सत्य सार सत्य आप ही है। सत्यस्य सत्यम रित सत्य नेत्रम, रित सत्य, रित कहते हैं सत्य को भी रित सत्य नेत्रम, सत्य को देखने वाले भी जो असली सच्चाई क्या है वो नेत्र भी आपके ही सत्य नेत्र है, क्योंकि नेत्र जो हमारा है एक इंद्रिया है, वही इंद्रिया के द्वारा हम कभी गर्व करते ना, मैं खुद देख रहा है सच्चाई में, देख रहा है मैं सच में, आई बिलीव आई सॉ इट, जब तक आंख में नहीं देखा ना तब कोई मानते सच्चा बात, अरे मैं था इधर, मैं आंख खोल करके देखा, चश्मा लगा करके देखा। तो इसलिए आंखों के ऊपर सत्यता निर्धारित करता है, इसलिए देवता कहते हैं रित सत्य नेत्रम, जो नेत्र के द्वारा सत्य निर्णय होता है वही नेत्र ही आप है, वो सत्य के नेत्र के ऊर्जा ही आप है, जो सत्य दृष्टि को, सत्य दृश्य को, सत्य को देखने का जो शक्ति देते हैं वो आइए रित सत्य नेत्रम, नेत्रम का जो नेतृत्व है वो भी आप ही है, आपके दृष्टिपन दृश्य भी आप है, रित सत्य नेत्रम और सत्यात्मकम, सत्य के आत्मा भी आप है, और सत्य कहीं टिक नहीं सकता। सत्य अगर का सत्य का कोई आत्मा भी हो वही सत्य है, मतलब आप लोग हमारे भक्त है वही सत्य है, भक्ति ही सत्य है, उसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। इस चराचर जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड में आप ही सत्य वस्तु है, आपको प्राप्त पाने के उपाय भी केवल एक ही सत्य उपाय हो है, भक्ति, भक्ति का गम्य हां केवल भक्ति अमाम अभी जान आती, भक्ति के छोड़कर और कोई उपाय है ही नहीं, वही एक सत्य उपाय है, एक ही सत्य उपाय है सत्यात्मकम, और आपके जैसे आप सत्य है आपके जो हो गए यही से आपके भक्तजन भी सत्य है, और जो उन भक्तजन के शरण लेगा वो भी सत्य हो जाएंगे, उनके शरण में जो जाएगा उनके भी सत्य हो जाएंगे, उनके शरण में नहीं जाया केवल उनको सपोर्ट किया अनुमोदन किया वो भी सत्यदर्शी हो जाएंगे, सत्य की राह पर चलने चले जाएंगे। इस प्रकार सत्यात्मकम, इस सत्यात्मकम को परम सत्य के शरण में हम शरणम प्रपन्नम, हम सभी आपके शरण में जानते हैं, आप ही तो वही शरण ही सत्य है, यही शरण ही सत्य है, बाकी सारे शरण मिथ्या है, कोई सत्य नहीं है, प्रकट सत्य हुई है। तो आज के इस सत्यात्मकम सत्यस्य जोनि सत्यस्य सत्य सत्यम परम सत्यस्य जोनि त्रिसत्यम सत्यव्रतम, आज उन्हीं के शरण में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी आने वाले हैं शाम को, ब्रह्मा लोग तो अभी एक दिन पहले प्रार्थना किए, हम लोग तो कुछ घंटे पहले सुन रहे हैं, प्रार्थना तो करना आता ही नहीं, सुन लीजिए। देवता लोग को जानते हैं इसलिए कैसे शरणागत होते हैं, वही शरणागति जो भगवान स्वयं आपने श्रीमुख से धर्म क्षेत्र में जो ज्ञान की मुकुट मणिक प्रस्तुत किए, उस ज्ञान के फाइनल कंक्लूजन स्टेटमेंट उनका ही था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः, सारे धर्म को छोड़ो तथा कथि धर्म को लिमिट, क्या करूं, माम एकं शरणं व्रज सरेंडर अनटू मी, यही परम धर्म है, वही परम कर्तव्य है, वही परम सत्य है, उसी सत्य को, यही सत्य है कि शरणं प्रपन्नः, हम आपके शरण में जाएं, वही शरण जाने का जो परम सत्य, एकमात्र कर्तव्य, एकमात्र परम चरम कर्तव्य, एकमात्र परम चरम धर्म सभी के लिए, प्राणी मात्र के मनुष्य मात्र के, इस चांस का सुजोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज के तिथि के दिन है। आज के दिन भद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि अर्धरात्रि में वो बेड़ा आने वाला है, इस बात को आज रात को चर्चा करेंगे, कृष्ण आगमन की कैसे तैयारी हुआ हो रहा है और क्या क्या किस प्रकार के घटित हो रहा है उसको वर्णन करेंगे। तो अभी केवल मन में अभी चिंतन कीजिए कैसे सत्यात्मकं तं शरणं कृपन्ना, वो पूरा दिन में उस परम सत्य के शरणागत होने के लिए देवताओं के अनुजाई, ब्रह्मा आदि गण के देवताओं के अनुजाई होकर के उन परम शरण्य के शरणागत होने के लिए मन में विचार लाइए, उनके शरणागत हो जाइए, शरणागत होने के लिए आज उन्होंने प्रकट कराए अपने आप को इस जगत को शरण देने के लिए, वो परम शरण्य परमानंद घनेक मूर्ति जान बुझ करके अजन्मा पुरुष आज जन्म लीला किए प्रकट हुए केवल केवल ही हम लोग को शरण देने के लिए, हमको शरण देने के लिए आए हैं, तो हमारा शरण देने शरण लेने का मौका आज है। तो पूरा दिन उनके शरण में रह करके उनमें शरण जाने के लिए चिंतन में मनन में भावना में क्रिया में मुद्रा में हमेशा हर प्रकार से हर तरीका से उनके शरण जाने के लिए प्रयास कीजिए, वही शरणम शरण्यम इतमें कह करके हम आप सभी के शरण में जाते हैं और सभी के द्वारा उनके शरण में जाने के लिए प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की, श्री जन्माष्टमी महाउत्सव की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि परमानंद।
His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj ki jai।